नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी के बात करें तो स्टूडियो की घड़ी में बड़े बजे हैं समय रात के 8:30 और हम हाजिर हैं आपके अपने खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन के साथ। दोस्तों, आज की शुरुआत हम करेंगे धमाकेदार खबर से, लेकिन पहले अपने विशेषज्ञ से आपका परिचय करा दें। आज के हमारे मेहमान हैं गिरीश बुबना।
शुक्रिया धर्मेंद्र।
और मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र। तो शुरुआत में धमाकेदार खबर यह है कि अहमदाबाद में भारत ने इंग्लैंड को 142 रन से हराकर क्लीन स्वीप कर दिया है। गिरीश
जी, हाँ, एक दिवसीय श्रृंखला में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तीनों टॉस हारने के बाद और क्लीन स्वीप 3-0 से भारतीय टीम ने विजय पताका लहराया है
जी।
और आज तो सबसे बेहतरीन ये रहा कि टॉस हारने के बावजूद इंग्लैंड के कप्तान बटलर ने निर्णय लिया कि वो पहले गेंदबाजी करेंगे। जब रोहित शर्मा टॉस पे थे तो उनसे पूछा गया था आपका क्या निर्णय होता टॉस पे अगर जीत जाते, तो वो कह रहे थे कि मुझे बल्लेबाजी ही करनी थी, मुझे आंकना था, क्योंकि पिछले दो मैचेस में उन्होंने चेज करके जीता था
जी। तो गिरीश कह सकते हैं कि आज इंग्लैंड की टीम के लिए टॉस जीतने के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं रहा इस मुकाबले में। हम आपके साथ ढेर सारी बात करेंगे इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अब सुर्खियां। अहमदाबाद में भारत ने इंग्लैंड को 142 रन से हराकर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच की श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। जसप्रीत बुमराह और यशस्वी जायसवाल चैंपियंस ट्रॉफी की अंतिम टीम से बाहर, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती को मौका। चीन में एशियाई मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और राष्ट्रीय खेलों में आज पुरुषों की जेवलिन थ्रो में सचिन यादव और महिलाओं के हाई जंप में पूजा सिंह ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। तो शुरुआत करते हैं क्रिकेट से ही। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने इंग्लैंड को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अब से कुछ देर पहले 142 रन से हरा कर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है और क्रिकेट के जन्मदाता का इस सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया है। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 356 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड की टीम 34 ओवर और 2 गेंद में 214 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की तरफ से हर्षदीप सिंह, हर्षित राणा, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेट लिए। पहले अगर हम बात करें इस मुकाबले की, तो गिरीश क्रिकेट का जन्मदाता पूरी श्रृंखला में संघर्ष करता हुआ नजर आया। तीनों मैचों की बात करें, कभी भी इंग्लैंड की टीम आत्मविश्वास में दिखाई नहीं दी, संघर्ष करती हुई नजर आई।
आप पूरा व्हाइट बॉल ही ले उनकी सीरीज का
जी।
तो अगर T20 की बात करें, सिर्फ राजकोट में छोड़कर हर एक जगह वो लड़खड़ाते नजर आए। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इनका एक ये था कि पाकिस्तान जाने से पहले उनको एक जीत मिल जाए, कंसोलेशन विन हो, लेकिन वो आज हुआ नहीं। टॉस जीता, जैसा कि मैं बता रहा था, तीसरी बार टॉस जीता, लेकिन टॉस और ड्यू फैक्टर के कारण उन्होंने पहले गेंदबाजी की। टॉम बैंटन को शामिल किया गया। टॉम बैंटन एक ऐसे खिलाड़ी थे जो इस टीम में नहीं थे
जी।
वो IL T20 UAE में खेल रहे थे, वहां पर उन्होंने 2 शतक लगाए थे। उसके बाद इनको शामिल किया गया कि आज खैर उन्होंने अच्छी शुरुआत भी दी जब 2 विकेट गिरे उसके बाद, लेकिन उनका फिर विकेट गिरा और उसके बाद से इंग्लैंड की पारी लड़खड़ाती नजर आई
जी। लेकिन बात करनी होगी भारतीय बल्लेबाजी की, क्योंकि भारतीय टीम ने 356 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बहुत जबरदस्त प्रदर्शन भारतीय बल्लेबाजों का रहा है। निश्चित रूप से चैंपियंस ट्रॉफी में ये ढेर सारा मदद करेगा। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
टीम इंडिया के युवा बल्लेबाजों ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक बार फिर अपनी जबरदस्त फॉर्म का परिचय दिया। खासकर उपकप्तान शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने ये दिखा दिया कि इसी महीने शुरू होने वाले ICC टूर्नामेंट से पहले वे पूरी तरह तैयार हैं। पहले मैच में 87 और दूसरे मैच में 60 रन की अर्धशतकीय पारियां खेलने वाले गिल ने उन दोनों पारियों से आगे बढ़कर इस मैच में अपना शतक भी पूरा कर लिया। उन्होंने 102 गेंदों में 14 चौके और 3 छक्कों के जरिए 112 रन बनाए। दूसरी तरफ सीरीज में किस्मत के सहारे अंतिम एकादश में जगह बनाने वाले श्रेयस अय्यर ने 59 और 44 रनों के बाद आज 78 रन की पारी खेली। धुरंधर विराट कोहली भी फॉर्म में लौटते नजर आए। उन्होंने 55 गेंदों में 52 रन की पारी खेली। बैटिंग में प्रमोट किए गए KL राहुल ने भी 29 गेंदों में 40 रन बनाकर अच्छा प्रदर्शन किया। मैच में एक समय 35वें ओवर तक 2 विकेट पर 226 रन बनाने वाली भारतीय टीम 400 के आसपास का स्कोर बनाती दिख रही थी, लेकिन लोअर ऑर्डर की बल्लेबाजी बल्लेबाजी के बिखरने से टीम इस स्कोर से दूर हो गई। हालांकि 350 से अधिक का स्कोर बनाकर भारत ने ये संकेत दे दिया है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बनने का बड़ा दावेदार है। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
तो गिरीश, सवाल यहीं से शुरू होता है कि इस प्रदर्शन के बाद भारत चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बनने का कितना बड़ा दावेदार है?
देखिए, भारत के लिए सबसे बड़ी एक जो मददगार चीज साबित होगी कि उनको पाकिस्तान नहीं ट्रैवल करना, वो एक ही जगह बैठेंगे दुबई में और सारे मुकाबले वहीं पर होंगे। जब तक वो सेमीफाइनल तक क्वालिफाई करते हैं तो सेमीफाइनल मैच भी उनका वहीं होगा और उसके पहले जो तीन मैचेस होंगे लीग मैचेस वो भी वहीं होंगे। और लेकिन दुबई में भी, धर्मेंद्र, मैं आपको बता दूं कि अभी एक महीना मैं यूएई में एक लीग के में काम कर रहा था, वहां बिता के आया हूं। वहां टॉस की बहुत अहम भूमिका होगी, तो टॉस जीतने के बाद कम से कम भारतीय टीम वहां पर पहले आपको गेंदबाजी करती हुई दिखेगी, क्योंकि ड्यू फैक्टर होगा। लेकिन आज अपने श्रोताओं को एक बात और भी बता दें कि शुभमन गिल, जिन्होंने शतक लगाया, 112 रन बनाए 102 गेंदों में, जैसे वीवीएस लक्ष्मण को कोलकाता का ग्राउंड ईडन गार्डन्स पसंद आता था, वैसे ही शुभमन गिल को अहमदाबाद का ये ग्राउंड पसंद आता है, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में वो सेंचुरी लगा चुके हैं।
जी, हम अब बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, क्योंकि भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कल अपनी अंतिम टीम का ऐलान कर दिया। चोटिल तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टीम में शामिल नहीं किए जा सके, उनकी जगह हर्षित राणा को टीम में जगह दी गई है। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल की जगह स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया गया है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
भारतीय क्रिकेट टीम को उस समय बड़ा झटका लगा जब करिश्माई तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट के कारण चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। अब उनकी जगह युवा हर्षित राणा को टीम में जगह मिली है। दुबई जाने वाली अंतिम 15 सदस्यीय टीम में 5 स्पिनर रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। लेकिन आंकड़े कहते हैं कि भारत को अपने मैच दुबई में खेलने हैं, जहां आमतौर पर वनडे क्रिकेट में तेज गेंदबाजों को अधिक कामयाबी मिली है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर 2009 के बाद से 58 वनडे खेले गए हैं। इनमें तेज गेंदबाजों ने 466 विकेट झटके हैं, जबकि स्पिनर्स को 334 विकेट मिले हैं। ऐसे में भारत की 5 स्पिनर्स की रणनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वरुण चक्रवर्ती को उनके शानदार फॉर्म के कारण चुना गया। दूसरी तरफ चैंपियंस ट्रॉफी में लीग चरण में भारत को बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से खेलना है और इनमें से किसी टीम के साथ चक्रवर्ती ने अब तक कोई मैच नहीं खेला है। अंतिम दश में जडेजा और अक्षर को जगह मिलना लगभग तय है। ऐसे में चक्रवर्ती के खेलने पर कुलदीप यादव को बाहर रहना पड़ सकता है। यशस्वी जायसवाल को भी टीम से बाहर रखने की वजह साफ नहीं है। रोहित के शतक के साथ फॉर्म में लौटने से भारतीय टीम प्रबंधन ने राहत की सांस ली है। फिटनेस से जूझने वाले हार्दिक पांड्या पर भी जोखिम लिया गया है, जो मोहम्मद शमी और अर्शदीप या राणा के साथ तीसरे तेज गेंदबाज हो सकते हैं। मोहम्मद सिराज को युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और हरफन मौला शिवम दुबे के साथ रिजर्व में रखा गया है, जो टीम के साथ यात्रा नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अंतिम टीम को चुनने में टीम प्रबंधन ने कोई जोखिम लिया है। देवेंद्र त्रिपाठी, स्पोर्ट्स कैन।
जी गिरीश, टीम आपने सुन ली, 5 स्पिनर्स टीम के साथ हैं और दुबई क्रिकेट स्टेडियम का जो रिकॉर्ड कहता है वो कहता है कि यहाँ तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा मदद होती है।
बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ऑलराउंडर जैसे हार्दिक पांड्या भी होंगे और उसके अलावा मोहम्मद शमी और आपके साथ हर्षित राणा भी होंगे, तो वहां पर तो गेंदबाजी की कोई कमी नहीं नजर आ रही
है। अर्शदीप सिंह भी है,
तो उस लिहाज से तो, लेकिन सबसे बड़ी कमी जो खलेगी वो बुमराह की है। सिडनी टेस्ट में कप्तानी कर रहे थे, दूसरे दिन के लिए स्कैन में गए और उसके बाद अब तक वो क्रिकेट नहीं खेले हैं, तो इस लिहाज से धर्मेंद्र उनकी कमी तो खलेगी यहाँ पर।
और कोलंबो में 2 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 49 रन से हरा दिया है। श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 46 ओवर में 214 रन बनाकर आउट हो गई और जवाब में मेहमान ऑस्ट्रेलिया की टीम 33 ओवर और 5 गेंद में 165 रन पर सिमट गई। क्रिकेट से एक और खबर, केरल की टीम रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पुणे में जम्मू कश्मीर के खिलाफ आज उसका क्वार्टर फाइनल मैच ड्रॉ रहा, लेकिन पहली पारी की बढ़त के आधार पर केरल ने अंतिम 4 में जगह बना ली। जम्मू कश्मीर ने पहली पारी में 280 रन बनाए थे, जवाब में केरल की टीम को 1 रन की बढ़त मिली थी। और अब चलेंगे राष्ट्रीय खेलों की तरफ। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में आज भी कई नए रिकॉर्ड्स बने। एथलेटिक्स मुकाबलों के अंतिम दिन उत्तर प्रदेश के जैवलिन थ्रोअर सचिन यादव, हरियाणा के हाईजंपर पूजा सिंह और हिमाचल प्रदेश के लॉन्ग डिस्टेंस रनर सावन बेरवाल ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीते। और भी कई रिकॉर्ड बने हैं। विस्तृत रिपोर्ट के साथ देहरादून से जुड़ रही हमारी सहयोगी साक्षी सिंह। साक्षी, आपका स्वागत, नमस्कार।
नमस्ते। नमस्ते धर्मेंद्र जी, आपने जैसे बात करी, आज एथलेटिक्स का आखिरी दिन था और आज भी रिकॉर्डों की भरमार रही, जहां सचिन यादव जो उत्तर प्रदेश के हैं उन्होंने जैवलिन थ्रो में 84.39 मीटर्स भाला फेंककर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। वहीं हाई जंप में पूजा जी ने 1.84 मीटर की जंप लगाई है और इसी के साथ वो एशियन चैंपियनशिप के भी के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी है। उसी की वैसे ही 50,000 मीटर में जो हिमाचल प्रदेश के सावन बरवाल हैं उनका भी जो नेशनल रिकॉर्ड के साथ है वो एशियन चैंपियनशिप्स के लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं। उसके साथ ही शॉर्ट पुट का आज रहा जिसमें जैस्मीन कौर जीती हैं। 400 मीटर हर्डल्स में पुरुषों में रुचित मोरी गुजरात के जीते हैं और महिलाओं में तमिलनाडु की विद्या रामराज रही हैं। इसके अलावा और एथलेटिक्स के अलावा कैनोइंग और उनकी कयाकिंग की थी जिसमें सर्विसेज ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया है। दोनों के K2 और C2 500 मीटर के इवेंट दोनों में सर्विसेज जीती है। वहीं फेंसिंग में आज हरियाणा ने डोमिनेट किया है। महिलाओं की साबरे इवेंट और मेन की एपी फॉइल इवेंट्स में सब में हरियाणा जीती है। हॉकी के आज सेमीफाइनल्स हो गए तो कल के हमारे जो फाइनल्स होंगे वो डिसाइड हो गए हैं। उसके साथ ही कल नेटबॉल के फाइनल्स भी डिसाइड हो गए हैं। इसके अलावा आज हैंडबॉल के फाइनल्स हुए जिसमें पुरुषों में SSCB जीते और महिलाओं में हिमाचल प्रदेश जीती है।
जी साक्षी, आप शायद बात कर रही थी 5000 मीटर रेस की जिसमें जी आज चैंपियन बने हैं खिलाड़ी और सावन बिरवाल ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है आज। फिलहाल आपका शुक्रिया, निगाहें बनाए रखिए। कल खेलों का अंतिम दिन है, हालांकि समापन समारोह परसों होगा, लेकिन कल खेलों में क्या कुछ होगा उस पर हम आपसे फिर विस्तृत जानकारी लेंगे। शुक्रिया
जी, धन्यवाद।
भारत एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। चीन के किंगदाओ में आज ग्रुप डी के अपने मैच में भारत ने मकाऊ को 5-0 से हराया। कल उसका मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। एक रिपोर्ट।
भारत ने मकाऊ का क्लीन स्वीप करने के साथ अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। टीम के लिए टूर्नामेंट के पहले मैच में नेशनल गेम्स के विजेता सतीश कुमार करुणाकरण और आद्या वरियाथ की मिक्स डबल्स टीम ने इयोक चोंग लियोंग और वेंग ची एनजी को आसानी से 21-10, 21-9 से पराजित कर टीम को विजयी शुरुआत दी। इसके बाद मेन सिंगल्स में पेरिस 2024 ओलंपिक सेमीफाइनलिस्ट लक्ष्य सेन ने पेंग फोंग पुई को आसानी से 21-16, 21-12 से मात दी। भारत की दूसरी रैंकिंग वाली खिलाड़ी मालविका बंसोड ने विमेन सिंगल्स में हाओ वाई चान पर 21-15, 21-9 की शानदार जीत के साथ भारत का स्कोर 3-0 कर दिया। इसके साथ भारत को मुकाबले में निर्णायक बढ़त मिल गई। हालांकि इसके बाद भी टीम की जीत का सिलसिला जारी रहा। मेंस डबल्स में चिराग शेट्टी और MR अर्जुन की जोड़ी ने चिन पोनपुई और कोक विन वोंग पर 21-15, 21-19 से जीत हासिल की। त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की दुनिया की 9वें नंबर की विमेन्स डबल्स टीम ने अंतिम मैच में एनजी वेंगची और पुई ची वा को लगातार गेम में 21-10, 21-5 से मात दी। भारतीय टीम कल अपने दूसरे और अंतिम ग्रुप मुकाबले में कोरिया से भिड़ेगी, जिससे ग्रुप विजेता का फैसला होगा। भारत ने साल 2023 में दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप के अंतिम संस्करण में कांस्य पदक जीता था। साल 2017 में उद्घाटन संस्करण में क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। साल 2019 में दूसरे संस्करण में भारत को ग्रुप स्टेज में ही हार का सामना करना पड़ा था। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
और मुंबई स्पोर्ट्स एरिना में इंडियन सुपर लीग ISL में इस समय मुंबई सिटी FC का मुकाबला FC गोवा के साथ चल रहा है। हाफ टाइम तक गोवा की टीम 2-0 से आगे है। कल जमशेदपुर के JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जमशेदपुर FC का सामना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC से होगा। और अगर गिरीश इन मुकाबलों की बात करें तो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन मोहन बगान का खास तौर पर निकलकर सामने आया और जमशेदपुर FC ने भी काफी बढ़िया प्रदर्शन किया है। 19 मैच में 34 अंक लेकर तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर आने के लिए संघर्ष कर रहा है।
मोहन बगान पहले पायदान में और FC गोवा जो धर्मेंद्र अभी मुंबई फुटबॉल एरिना में जो मैच चल रहा है, तो अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि अगर ये गोवा मैच जीत जाता है तो पिछले 12-13 मैचेस के बाद ये पहला मैच जो है गोवा की टीम जीतेगी और इस लिहाज से गोवा की टीम जो है वो अपना दबदबा दूसरे पायदान पे ही बनाना चाहती है।
जी, और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो गिरीश, स्टूडियो में आने के लिए हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।